नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को शुरू हुई। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगिता वाहनों की परिभाषा के अलावा पंजीकरण और इनपुट कर क्रेडिट दावों के लिए नियमों को कड़ा करने पर विचार हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बैठक की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद यात्रा की ओर 50 कदम शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की। वित्त मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, अब तक हुई 49 बैठकों में परिषद ने सहकारी संघवाद की भावना के साथ लगभग 1500 निर्णय लिए। ट्वीट में कहा गया कि 50वीं बैठक एक मील का पत्थर है जो सहकारी संघवाद की सफलता और एक अच्छी और सरल कर व्यवस्था की स्थापना का संकेत देती है। सेबी ने रैलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अनुषंगी रैलीगेयर फिनवेस्ट के कोष की हेराफेरी से संबंधित एक मामले में 7 इकाइयों को 15 दिन के अंदर 4.3 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा है। सेबी ने इसके साथ ही नियत समय में यह राशि नहीं चुकाने पर संबंधित इकाइयों की संपत्तियों एवं खातों को कुर्क करने की चेतावनी भी दी। सेबी ने यह राशि वसूलने के लिए गिरफ्तारी या हिरासत में लेने का विकल्प भी रखा है। जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें टोरस बिल्डकॉन, आर्टिफाइस प्रॉपर्टीज, रोडस्टर मार्केटिंग, ऑस्कर इन्वेस्टमेंट, एड एडवर्टाइजिंग, जोल्टन प्रॉपर्टीज और सौभाग्य बिल्डकॉन है। सेबी ने अक्टूबर 2022 में इकाइयों पर लगाए गए जुर्माने को नहीं चुकाने के बाद ये मांग नोटिस भेजा है। सोमवार को भेजे नोटिस में सेबी ने कंपनियों को 15 दिन के अंदर 4.3 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा है। इनमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है। गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों की तरफ से गैर कानूनी तरीके से धन भेजे जाने से वित्त वर्ष 2022-23 में $4 अरब से भी अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक SBP ने धन प्रेषण के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि जून के महीने में विदेश से भेजी गई राशि मई की तुलना में 4% बढ़कर $2.18 अरब हो गई। हालांकि जून 2022 के $2.8 अरब की तुलना में इस राशि में 22% की बड़ी गिरावट आई। पाकिस्तानी समाचार पत्र द डॉन में मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में पाकिस्तान को विदेशों से कुल $27.02 अरब रकम भेजी गई, जो एक साल पहले के $31.27 अरब की तुलना में 13.6% कम है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में विदेश से प्रेषित रकम में $4.25 अरब की बड़ी गिरावट के पीछे की कोई वजह नहीं बताई है। सरकार और कंपनियों के विज्ञापन पर अधिक व्यय से प्रिंट मीडिया के राजस्व में चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 15% तक की वृद्धि हो सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा वित्त वर्ष में प्रिंट मीडिया का राजस्व 13-15% बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए रह सकता है। महामारी के कारण प्रिंट मीडिया की आय 2020-21 में 40% लुढ़क गई थी। हालांकि बाद में इसमें तेजी आई और 2021-22 और 2022-23 में इसमें क्रमशः 25% और 15% की वृद्धि हुई। क्रिसिल ने कहा कि उसका अनुमान उन कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है जिसकी रेटिंग वह कहती है। इन कंपनियों का क्षेत्र के कुल कारोबार में 40% हिस्सा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कंपनियों की कुल आय में 70% योगदान विज्ञापनों का जबकि 30% ग्राहकों का है। दफ्तर में बैठकर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति में जून में सालाना आधार पर 3% गिरावट आई। नौकरी दिलाने वाले मंच फाउंडेड की एक रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा और विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों में भर्तियों को लेकर सतर्कता के कारण ये गिरावट आई। रिपोर्ट के अनुसार आईटी क्षेत्र में भर्तियों में 19% की गिरावट आई। इसी तरह BFSI में 13%, घरेलू उपकरण में 26% और उत्पादन विनिर्माण में 14% की गिरावट आई। हालांकि मासिक आधार पर इन क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी फॉक्सकॉन की भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई लगाने के लिए अलग से आवेदन करने की योजना है। कंपनी ने भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए मंगलवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा कि वह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करने की योजना पर काम कर रही है। फॉक्सकॉन ने सोमवार को वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने की घोषणा की थी। फॉक्सकॉन ने कहा था कि वह खनन क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड के साथ $19.5 अरब के संयुक्त उद्यम से बाहर निकल रही है। फॉक्सकॉन ने कहा, हम भारत के और विदेश के हितधारकों का स्वागत करेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि भारत अगले स्तर तक जाए। जर्मनी की लग्जरी कार वी निर्माता मर्सिडीज बेंज की भारत में बिक्री 2023 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 13% बढ़कर 8,528 इकाई पर पहुंच गई। यह कंपनी की देश में सबसे अच्छी छमाही बिक्री है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 2022 की जनवरी जून अवधि में 7,573 कारें बेची थी। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि 2023 की पहली छमाही में टॉप एंड यानी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत के वाहनों की काफी ऊंची मांग देखने को मिली। पहली छमाही में कंपनी के 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के वाहनों की बिक्री 54% बढ़कर 2000 इकाई पर पहुंच गई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।